ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पुण्यात्माओं, ठीक है, परमात्मा ने आपका पिछला संस्कार है, आपके अच्छे पुण्य हैं, आपको धन दिया है, माया दी है, ठीक है, अपना को मकान ठीक सा बना लीजिए, आधुनिक सुविधाएं भी प्राप्त कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार, ज्यादा नहीं। और एक गरीब व्यक्ति है जिसने केवल एक ही मकान मुश्किल से कमरा बना पाया है, एक रसोई मुश्किल से बनी हुई है, और एक ऐसा है कि जिसने एक एकड़ में कोठी बना रखी है और दो और तीन चार मंजिल की भी पता नहीं कितने मंजिलों की बना रखी है, लिफ्ट लगा रखी है, पता नहीं कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो वो गरीब व्यक्ति जिसकी मकान की छत छान वो भी टूटी हुई हो लेकिन वो भक्ति करता हो, वो परमात्मा को प्यारा है। और वो सुंदर महल में रहने वाला जो भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। उन घरों में ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। एक अखबारों में भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के पास बहुत माया थी, ऐसी कोठी बना रखी थी उसने, ऐसे उसमें जीना चढ़ा रखा था पेड़ काला कि उसमें लोढ़ी ट्रक उसकी छत पर पहुंच जाता था। और फिर क्या हुआ, जब उसके अंत समय आया, किस दुर्गति से हुआ, उसी की पुत्री ने, जैसा कि समाचार पत्रों में सुना, उसी की पुत्री ने किसी आपसी संपत्ति की विवाद में वो पिता भी और सौतेली मां भी और भाई भी, उसके बच्चे भी सारे काट डाले। उस व्यक्ति की कैसी दुर्गति हुई, जहां भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे कहर टूट जाते हैं। और यदि वो प्रभु की शरण में होता, सद्बुद्धि देता भगवान, उसको भी सद्बुद्धि देता, अपनी बेटी को भी हिस्सा देता, ले बेटी तेरा भी तो भी मेरी तो संतान है, तो ऐसी व्यवस्था करा देता और मोक्ष देता। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, बड़े बड़े जो सेठ थे अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश हो जाने से और वहां हार्ड खिंड गए। परमात्मा इन सब बातों को याद दिलाते हैं, ये नहीं कि हम ना मरेंगे या आप नहीं मरोगे, मरना सभी ने है, लेकिन जो भक्ति करके नहीं करता वो खाली जाता है सच्चे दरबार में, फिर उसका काला मुंह किया जाता है और 84 लाख योनियों में ठोक दिया जाता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम रटत कन्या भली, साकट भलो नपूत, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूते। जैसे हमारे समाज में एक विशेष पहले से कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम पुत्र को महत्व ज्यादा देते हैं और बेटियों को कम देते थे। अब तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में तो ऐसा विशेष नहीं रहा है, फिर भी जो भोले भाले हैं वो एकादावे से किस उलझन में उलझा हुआ नहीं। पहले बहुत ज्यादा था ऐसा। तो उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि भाई राम रटत कन्या भली, बेटी बहुत अच्छी, हमें वो बेटी अच्छी है जो भक्ति करती है, और वो साकट पुत्र, वो पुत्र भी जो साकट हो वो हमें कति आवश्यकता नहीं। साकट एक तो नास्तिक होता है, नास्तिक वो होता है स्वयं भक्ति नहीं करता पर और किसी को बाधा नहीं करता। साकट वो होता है स्वयं भी भक्ति नहीं करे और कोई जैसे उसके उसे संबंधित और उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में जितने व्यक्ति हो उन भक्ति ना करने दे, स्वयं भी नहीं करे और उनको भी किसी न किसी कारण से परेशान रखे ताकि वो भक्ति ना कर सके, उसको साकट कहते हैं। साकट संत लैंग्वेज में। तो क्या बताते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बलाना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना, बकरी के गल में एक थन जैसी खालड़ा लटक्या करता है गले में, सतन थन जैसा ही होता है लेकिन उस वो किसी यूज में नहीं आता, ना उसमें दूध होता है ना वो पेशाब के काम आता। कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं वो बेटा तो उस बकरी के गल में जैसे वो गलथना लटके, व्यर्थ का वजन, बेमतलब का बोझ, तो वो बेटा जो भक्तिहीन प्राणी है वो बेटा उस पिता के गले में एक व्यर्थ का बोझ है, और वो बेटी अच्छी है जो भगवान के चरणों में लगी हुई है। अब जो बेटी भगवान के चरणों में लगी है और परमात्मा की भक्ति कर रही है, उसका विवाह होगा, उसका जीवन सफर होगा, प्रारंभ होगा, परमात्मा अपनी बेटी के लिए आगे से आगे उसके दुखों का निवारण करेगा और माता पिता चैन से अपनी भक्ति कर लेंगे। तो कहते हैं वो माता पिता के लिए बोझ नहीं बनेगी वो बेटी जो भक्ति करती है, और जो साकट बेटा भक्ति नहीं करता वो तो एक सिरदर्द है, वो वजन है जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, अर्थात यूजलेस। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब जैसे राजा लोगों के यहां, पैसे वालों के यहां पुत्र उत्पन्न होता था तो खुशी मनाते थे बाजे बैंड बजा के, और गरीब व्यक्ति ने पुत्र होने की खुशी मनाने का तरीका ढूंढ रखा था कि थाली बजाया करते थे, ये थाल पीटा करते। तो जहां भी कहीं आसपास थाली की बजने की आवाज आती तो आसपास गोहंड के व्यक्ति समझ जाया करते कि थे के उनके घर में बच्चा होने वाला था तो उनको लड़का उत्पन्न हुआ है। ये थाली बजाना लड़का उत्पन्न होने की पहचान होती थी। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाड़े। एक लाख जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म लेने के लिए आ रहे हैं, 1 लाख मर के जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म उत्पत्ति के लिए भाग्य आ रहे हैं, अलग अलग माताओं के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। अब परमात्मा याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख कहे और ये खुशी मान रहा है ना ये अनजान मन, ये तो सकल चबीना, चबीना माने आहार, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, 100,000 तो मुख में जा लिए आज, और बाकी जो बचे हुए इनको गोदी में, गोदी मीन उनको पाल पोस रहा है, उनको खिला रहा है, प्रसन्न कर रहा है, और फिर समय आने पर उनको भी खा जाएगा। परमात्मा कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, पतझड़ आवत देख कर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। अब क्या बताता है परमात्मा, क्या बताना चाहते हैं कि भोली आत्माओं आप यहां स्थिर नहीं हो, ये आपका मकान नहीं, आपका घर नहीं है, आपका ठिकाना नहीं है, ये लोक आपका नहीं है। आज यहां जन्मे हो, मृत्यु होगी, ना जाने कहां नरक में डाले जाओगे, कोई पुण्य है उनको स्वर्ग में रखा जाएगा, और पुण्य स्वर्ग में समाप्त होते ही आपको तुरंत नरक में डाल दिया जाएगा, नरक का पीरियड समाप्त होते तुरंत आपको चलता कर दिया जाएगा, यहां 84,00,000 योनियों ऐसे ही मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। इसलिए बताया है कि जैसे पतझड़ अब आएगी, आ चुकी है, अब क्या होगा कि पहले वाले पत्ते पीले पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाएंगे, और तुरंत ही नई कोपल फूट आएंगी, और कुछ दिनों में वो पत्ते का रूप धारण करके हवा में ऐसे लहला रही होंगी, और 1 वर्ष तक वो मस्ती मार लेंगी, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे 1 वर्ष के, हो सकता बीच में टूट जाए, दीते तूफान आ जाए तो वृक्ष ही गिर जाए, वो तो अलग से है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु कहते 1 वर्ष के बाद वो जो अब मस्ती मार रहे हैं वो पीले होकर गिर जाएंगे। ये आप जी को हमें समझाने के लिए प्रभु ये हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चलनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ही, ताते लगी है वार। परमात्मा हमें बताते हैं कि आपके जो पहले कोई मित्र रिश्तेदार भाई बहन या माता पिता दादा दादी आपके साथ रहा करते, वो कुछ वो चले गए, अब आप भी चलने वाले हो। परमात्मा कह रहे हैं कोई कागज में बाकी रह रही, वो समय ना आया है जिस दिन वो बटन स्विच ऑफ करेगा तेरे जीवन का काल, वो कागज में बाकी रह रही है, कोई समय शेष रह रहा है तेरा, जिस दिन वो आएगा तो भी सारे काम को, चाहे आप बस में हो, विदेश गए हो, किसी भी कारण से आपको वहीं का वहीं आपका एक श्वास भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रभु को मत भूल, हम यदि परमात्मा के चरणों में लगे रहेंगे, उस परमेश्वर की शरण में सच्चे मंत्र का सच्चे ढंग से लगे रहेंगे, जाप करते रहेंगे, तो एक तो ऐसे हमारा परमात्मा हमारे जीवन में वृद्धि करेगा, और ऐसी बेमौत नहीं मरेंगे हमारे भक्त परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनके लिए ये शिक्षा उपदेश परमात्मा बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। फिर देर को नहीं, जब ये शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाएंगे, ये खोखा पड़ा रह जाएगा, कुल के लोग तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, अन्यों कहेंगे भाई जल्दी ठाओ, जल्दी ठाओ, जल्दी करो, और कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई कुछ व्यवस्था करने लग जाएगा, और जिसका वो मृत्यु होती है घर में, वो बेचारे बुरा हाल रो रो कर टक्कर मारने लग जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं या फिर कति देर नहीं है, इतने देर है, इतने तेरी या स्विच ऑफ ना होता या मृत्यु ना आती तेरी। फिर क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वो तो तूने देखे नहीं, वे आगे तेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आए, और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए वो तो वापस नहीं आए, आपको वो जो के तू उसी स्वरूप में नहीं मिले, वो वैसे तो आते रहेंगे 84 लाख योनियों में। पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना नहीं। कबीर परमेश्वर की भक्ति बिना जीव की कहीं भी ठिकाना नहीं है। अब यहां मनुष्य जीवन में चाहे राजा बना है, मृत्यु जिस दिन समय आएगा वो राजा जो का तो हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारणों से तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, जैसे उसके पुण्य होंगे तो वहां स्वर्ग गया, स्वर्ग में समय पूरा होती ऐसे ही चलाचली कर देंगे, चलो फिर नरक में फिर 84 लाख यूनियम कुत्ते की जुन्नी पाई, कुत्ता मृत्यु हो गया, फिर गधे की पाई, गधे मृत्यु हुआ, आगे फिर और अन्य प्राणियों में। कहती है कितने ठिकाना कौन, आज कोठी बनाई है। एक व्यक्ति एक शहर में बहुत बड़ी कोठी बनाई उसने, मेन रोड के ऊपर, और उसमें एक मार्केट टाइप बिल्डिंग बनाई जिसमें सैकड़ों दुकान बनाई, और बना रहा था वो सैकड़ों दुकान, और उसका उद्देश्य था कि ये कम से कम भी 2-4 लाख रुपए डेली का मुझे लाभ देगी, इतना पैसा मेरे जो है ना कमाऊंगा। वो क्या कर रहा था कि आधी बिल्डिंग बन चुकी थी, आधी शेष थी, वहां मजदूर जो काम करते थे उनको पैसे दे करके वहीं पटडा गाल के स्नान करने लग गया, गर्मियों के दिन थे। स्नान करके अपना जो है ना तैमंद धोती बांधी थी, और बांधते ही हार्ट अटैक हो गया, वहीं का वहीं लुट गया। वो मजदूर वहीं पर अपने कुछ नोट नाट गिनती कर रहे थे, वहीं बैठे थे, कुछ चले गए थे, एक सेकंड में मृत्यु होगी और वो उसकी पलान नो की नो रहेगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं भाई, आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जान, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, कितने ठिकाना नहीं तेरा उस परम पिता परमेश्वर कबीर जी की भक्ति बिना। उस कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा कि हम सतलोक चले जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 का एक विशेष विवरण है कि परमेश्वर उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस पूरे ब्रह्मांडों को समझो कि परमेश्वर की जो कंस्ट्रक्शन है इसको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो ऊपर को इसकी जड़ है, नीचे को शाखाएं हैं। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को शाखाएं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष की सर्व शाखाओं के बारे में, सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, उस वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना क्या है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पात क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, सै वेद वित। तो फिर कहा जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसा कि मैंने तुझे बताया अर्जुन, अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर और 31 तक, कि कोई तो भगवान की ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की अन्य देवताओं को पूजता है, कोई पितरों को पूजता है, कोई हठ योग करता है, कोई खड़ा होकर, कोई केवल प्राण अपान की वायु का अभ्यास करके, कोई अपनी ये प्राणायाम करके, इन्हीं को मोक्षदायक मानकर कर रहा है। लेकिन उस परमेश्वर के द्वारा बोले गए अपने मुखारविंद से तत्व ज्ञान में, उनकी वाणी में, उनके मुखारविंद से उच्चारित जो तत्व ज्ञान है उसके अंदर ये सभी विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, उस वाणी को तू तत्वदर्शी संतों से के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मैं नहीं जानता उसको, नहीं तो वो जानता होता है, लिख ही देता है सारे, तो इतनी 18 अध्याय लिखी है, 4 लाइन और लिख देता, 4 श्लोक और लिख देता कि ऐसा है, ऐसा लिख, ऐसा कर। तो वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, जो गीता ज्ञान से अलग है, भिन्न है। और जैसा फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करे ऐसा कर। उस फिर बताया गीता जी अध्याय नंबर प्रथम में लिखा कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी, इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को वो भिन्न भिन्न पार्ट सहित बताएगा। अब फिर देखिएगा, क्योंकि पवित्र सदग्रंथों को पढ़ने से, देख सुनने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान यज्ञ जब हमारे समझ में आ जाएगी, तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर हम भ्रमित नहीं हो सकते। इसलिए हमने इस तत्व ज्ञान को रह रहकर सुनना और पढ़ना होगा, ताकि हमारा जो भ्रम अंधेरा है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करते हैं। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि दूसरे योगी जन यानी साधक देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब यज्ञ माने देवताओं की, यज्ञ का माने पूजा का, यज्ञ माने पूजा धार्मिक अनुष्ठान। कुछ तो देवताओं की पूजा क्या करते हैं, अन्य योगी जन ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में, ब्रह्म अग्नौ का अर्थ होता है परमात्मा के वियोग रूपी अग्नि में, इसका अर्थ होता है यज्ञ के द्वारा, यानी विरह को ही ज्ञान भक्ति मानते, आत्म तत्रूप आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26 में कहा है कि अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये क्या बताया जा रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि कोई तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कोई केवल एक वियोग वैराग में गाते बजाते, या जैसे आपने सुना हो पढ़ा होगा, कभी सुनाते हैं हम कई बार, कि जैसे ऋषभ देव जी को इतना वैराग हो गया, वो उस वैराग में जंगल जंगल में घूम रहा था, इतना उस विरह अग्नि में परमात्मा के पाने की विरह अग्नि में, तो कहते हैं उस वन में आग लग गई, बांसों के आपस में रगड़ा खाने से दावानल लग जाती है, वो पूरा जंगल जल गया और ऋषभ देव जी भी जल के नष्ट हो गए। तो यहां इसमें यही बताया कि कुछ तो ब्रह्म अग्नि में, ब्रह्म अग्नि का अर्थ भगवान के पाने रूपी वियोग की एक तरफ में, वो उसी में भ्रमते भटकते रहते हैं, उसी को मोक्ष मानते हैं, उसी को मोक्ष का मार्ग मानते हैं, और कुछ अपने इंद्रियों को हठ योग से रोकने की चेष्टा करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई किसी प्रकार से, आगे देखना फिर। आप 26 आपने पढ़ लिया, अब 27 देखो, दूसरे योग, हाँ ये आपने पढ़ लिया, हाँ दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब इसका क्या अर्थ बताते हैं कि जैसे कुछ तो अपनी इंद्रियों को हठ योग से रोकने की में ही अपना मोक्ष मानते हैं, जैसे राजा जनक के पास, जैसे सुखदेव ऋषि जी थे, उन्होंने अपने इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को जीतने की चेष्टा कर ली थी कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया और उसी से वो मोक्ष मान रहा था। तो राजा जनक के पास जब वो गए उनसे उपदेश लेने के लिए, तब राजा जनक ने कहा था कि जनक के पुता ना उसके व्यास के पुत्र, आपने इन इंद्रियों को रोक तो लिया लेकिन अस्थाई तौर से, ये ना तो किसी की रुकी आज तक। कहते हैं ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री धूता, इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। और फिर परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने बताया है, कहते हैं शब्द सपरस रूप रसगंध, ये पांच प्रकार के विकार होते हैं जिनसे ये प्राणी, जिनके कारण ये प्राणी अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। शब्द का अर्थ होता जैसे कानों का रस लेना, मीठी मीठी आवाज, जैसे गाने बजाने, इन पाद में इतना प्रभावित हो जाता है बस की बात नहीं रहती। तो कहते हैं कुरंग, एक मृग को कुरंग कहते हैं, उसमें विषय का विकार, उसके अंदर कान के से शब्द सुनने के विकार होता है, वो इतना विवश होता है कि शिकारी लोग उनको पकड़ने के लिए एक ऐसी धुन तैयार करते हैं सारंगी तय, वो इतना प्रभावित होता हो जाता उन कानों के शब्द के कारण कि उस शिकारी के सामने आकर के ऐसे गर्दन रखकर आनंद लेने लग जाता है और वो उसकी टीट भी पकड़ लेता है डर के सरंगी ने और बांध देता है उसको रस्से तय, और फिर उसका मांस न्यारा बेचे, चाम न्यारा बेचे। और सप्रस जो है उसने, कुरंग ने अपने एक विकार के कारण, एक इंद्री के कारण, कान इंद्री के कारण अपना जीवन बर्बाद कर दिया, नौछावर कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर सप्रस ये संतान उत्पत्ति की जो प्रेरणा है इसको सप्रस कहते हैं। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा खोद लेते हैं लंबा चौड़ा, उसके ऊपर एक लकड़ों की छत दे करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके लंबी चौड़ी, और उसके ऊपर फिर छोटा छोटा घास नया बिल्कुल ताजा उसमें ऐसे लगा देते हैं जैसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल घास उगा हुआ है। उस अथनी को भेज देते हैं उन हाथियों के झुंड में, वो ट्रेंड होती है और वो जाकर के उन हाथियों को सप्रस करती है, उनको प्रेरणा करती है, उनके अंदर रजोगुण उत्पन्न कर देती है। और फिर वो उसके साथ भागने की चेष्टा कर, जब वो कोशिश करते हैं तो वह भाग लेती है, पीछे पीछे हाथी उसके पीछे पीछे चार पांच छह का झुंड लग लेता है। वो ट्रेंड होती है, सीधी भागी आती है, वो जो हाथी पकड़ने वाले वृक्षों की ओट में खड़े हो जाते हैं आड़ में, वो हथनी एक बार तो सीधी भागी आती है, हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, वो एकदम साइड काट के और फिर ऐसे ऐसे घूमकर नो भाग लेती है, ऐसे फिर सीधी भाग लेती है। हाथी फिर सीधे ही भागे आ जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, नहीं देखते आगे क्या है, नहीं तो हाथी सूंघ सूंघ के कदम रखता है, तो एकदम वो उन गड्ढे में आकर गिर जाते हैं जो वो लकड़ी से छत दे रखी थी, और वहां रो चंग आड़ मारा बुरा हाल करे, फिर उसके अंदर उसको हाथी पकड़ने वाले फिर ऊपर से उनका भाल्य ठोक के खूब उनको नचा के कुदा के भूखे रख के, जो वो कति ऐसे हो जाते तब उनको पकड़ के बाहर और नगर नगर गांव गांव में उनकी दुर्गति करते हैं, उनसे फिर भीख मांगते हैं उनके ऊपर बैठ के। एक कान, एक सप्रस के कारण, एक रजोगुण के कारण, सप्रस जो एक इंद्री का रस के कारण, उसने प्रजनन इंद्री के कारण के रस, उसके कारण उसने अपना जीवन खो दिया। रूप, ये जो पतंग होते हैं, छोटे छोटे जो पतंगे, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये दीपक के ऊपर या हाइलोजन जल रही है उसके ऊपर ऐसे भाग कर चिपक जाते हैं, उनके बस की बात नहीं, वो रूप के ऊपर आसक्त होते हैं और उससे वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। रस जीभ के स्वाद, जीभा इंद्री के कारण एक मछली जो अपना जीवन बर्बाद कर देती है, क्योंकि मछली पकड़ने वाले एक कांटे में लोहे के गुंडी वाला तार होता है, उसके अंदर एक मांस का टुकड़ा फंसा के और एक धागे से वो कुंडा बांध कर कांटा और जल में डाल देते हैं और वो मछली भाग कर उसको पकड़ लेती है। पकड़ते ही वो कांटा उसके अलक में गड़ गया, अंदर जो है ना उसके मुख के अंदर फंस जाता है और वो झटका देते हैं और ज्यादा गड़ जाता है, बाहर पटक मारे है और वो मछली ने उस एक अपने जिह्वा स्वाद के लिए द्री के कारण अपना जीवन खो दिया। सुगंध गंध भौरा एक होता है, भौरा एक आपने देखा होगा काला सा बूंद सा उड़ता हुआ चला करे, उस भौरे के अंदर नाक इंद्री जो है नासा इंद्री ये प्रभावित होती है, इसके कारण वो फूल पर बैठ जाता, सुगंध लेने में इतना मस्त हो जाता है, रात्रि में फूल बंद हो जाता है और उसी में अपना जान बर्बाद, वो मर जाता है लेकिन उठ नहीं सकता। तो यहां परमात्मा ये बताना चाहते हैं कुछ तो दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कहते हम बहुत अपने आप को साध लिया है, अपनी इंद्रियां रोक ली है, परमात्मा कहते हैं कैण सुन की करते बाता कोई ना देखा अमृत खाता। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग सरंग और भरंगा इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। होय होय कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा और तुम रे संग पांचों प्रकाशा ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक प्राणी उन प्राणियों में एक एक इंद्री प्रभावित थी जिसके कारण अपना जीवन खो दिया, तुम्हारे साथ तो पांचों विकार आपके अंदर मनुष्य जीवन के अंदर काल ने ये पांचों फिट कर दिए और किसी न किसी कारण तो तेरे जाल में रहेगा ही रहेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम्हारे संग ये पांचों प्रभावित हैं तो योग युगत की झूठी आशा। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि कोई तो ऐसी साधना को उत्तम मोक्षदायक मान जानता है, कोई इसको मोक्षदायक जानता है, उसको मोक्षदायक जानकर ही करता रहता है। कहते हैं आगे बताएंगे कि वो तो इनके विषय में और विस्तृत ज्ञान तत्वदर्शी संत वो परमात्मा ने आकर ही को अपने मुखारविंद से बताया हुआ होता है, वो तत्व ज्ञान है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 चल रहा है, आपने 27 सुना। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों यानी श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित यानी अपनी सूझबूझ तनों का हमने संयम कर लिया, आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। 28 में देखो कई पुरुष द्रव यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं यानी भंडारे भंडूरे करते रहते हैं, तपस्या करने वाले ही कितने ही अन्य जो तपस्या रूप यज्ञ करने वाले जो तप करते हैं हठ योग करके खड़े होकर बैठकर जो पानी में कहीं कहीं तथा कि दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ को हवन करते हैं, कुछ योग ही करते हैं जैसे योगासन जिनको कहते हैं करते हैं, कितने ही करते हैं, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब देखो कहते कुछ तो बेचारे इसे जबरदस्त इतना तप इतना भयंकर जो है ना कष्ट सहन करते हैं तीक्ष्ण, जैसे आपने जैनी साधु देखे होंगे पैरां तर नंगे मुंह पर पट्टी बांध लेंगे, कहती है इसी को मोक्ष मानते हैं है? कहते नावा भी कोई ना कदे, कुछ ऐसे है जैनियों में कि नान स्नान भी नहीं करना है, स्नान करने तो जीव मर जाएंगे, तेरा बोला पैदल चलो फिर कितना मार दो तुम, मतलब अब बिना ज्ञान के, बगैर तत्व ज्ञान के ऐसे कहते हैं, सभी अपनी अपनी साधनाएं ऐसी ऐसी कर रहे हैं। कुछ सब अध्याय, जैसे किसी ने बता रखा गीता जी का एक पाठ डेली कर लिया करो, एक अध्याय, ओहो बेड़ा पार हो जाए। कहते इस सब अध्याय से ही कोई मोक्ष मानते हैं, नहीं। अब कहते इस सारे तत्व, इस सभी के विषय में तत्व ज्ञान से निर्णय होगा, वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला हुआ है। इसका इस पवित्र गीता जी के ज्ञान को हमने इस तरीके से समझना है, जो इसका वास्तविक लाभ हमें मिलेगा। अब देखना अध्याय नंबर 4 का, आपने ये 28 तक सुन लिया, अब 29-30। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार यानी कुछ कम आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये जो साधना कर रहे हैं ना, जैसी भी, वो सभी इन सभी अपनी क्रियाओं को पाप नाशक ही मानकर करते हैं कि हम अपने क्योंकि पाप नाश हो बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं सभी जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये अपनी अपनी क्रिया को जो करते हैं ऐसे, वो पाप नाशक जानने वाले हैं, यानी उनको पाप नाशक जानते हैं। अब आपने 29-30 में क्या पढ़ा कि कुछ तो योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। कुछ आपने देखा होगा योग अभ्यास यानी प्राणायाम अभ्यास से श्वास को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं और उसी से कहते हैं हम मोक्ष हो जाता है, काफी समय तक प्राण रोकने का अभ्यास कर लेते हैं और कहते हैं बस इसी से ये मोक्ष हमारा तप बन रहा है, साधना बन रही है। कहते हैं नहीं, परमात्मा कहते ऐसा नहीं। कुछ योग करते हैं, योग माने अभ्यास, योग अभ्यास करते हैं, उसी से अपना कल्याण मानते हैं और कितने ही नियमित आहार करके और कुछ प्राण अपान की वायु को गति को रोक कर यानी जो अपना सांस रोक लेते हैं। आगे बताया है कि ये वैसे तो सभी समझते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं वो पापनाशक, उनको पापनाशक ही जानते हैं। आगे बताया है कि हे कृष्ण, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, ये देखिएगा 31 फिर पढ़िए, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे हो सकता है, सुखदायक हो सकता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए कि सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं कौन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। अब पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर के 15 तक विवरण दिया है कि प्रजापति ने, परमात्मा ने सबसे पहले प्रजा रचकर उनको कहा था तुम यज्ञ किया करो और कहा था तुम यज्ञ करके उन्नति को प्राप्त करो और तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ और वो उन्नत हुए हैं देवता तुम्हें बिना मांगे ही लाभ दिया करेंगे। फिर आगे बताया है कि अध्याय नंबर 3 के ही श्लोक नंबर 14-15 में उसमें क्या बताया कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है, धार्मिक अनुष्ठानों से होती है। यज्ञ जैसे यहाँ पांचों यज्ञ चलती हैं, इनसे सृष्टि का बैलेंस बना रहता है। वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होते हैं और यज्ञ यानी कर्म ब्रह्म ने लगाए। ब्रह्म इस काल के लोक में हम आए तो हमने काम करना पड़ा और ये अनुष्ठान करके अपना टाइम पास इसे कुछ राहत लेकर के अपना गुजारा करते, लेकिन हम सतलोक में चले जाते हैं वहां नैष कर्म में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वहां काम नहीं करना होता। लेकिन यहां हम आए काल के लोक में तो हमारे कर्म लगे, ये कर्म लगाए काल ने ब्रह्म ने और इस काल ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस परम अक्षर ब्रह्म से, यानी अक्षर ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। और वो पूर्ण परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा सर्वव्यापक वासुदेव पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यज्ञों में यानी उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जो साधना करते हैं वो उसको प्रतिष्ठित रख करके कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के प्रति को इष्ट मानकर, तो फिर उससे जो लाभ होता है वो सभी वो पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, वो वास्तविक यज्ञ है। अब देखना, अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में कहा कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का जो अनुभव करते हैं। अब तीसरे अध्याय का आप देखिएगा, ये 3 श्लोक आपको 4-5 श्लोक पढ़ाएंगे क्योंकि तीसरे से कंटिन्यू आ रहा है ये। ये देखिए अध्याय नंबर 3 और यहां से 10 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था, तुम लोग यज्ञ इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब 11 में कहा है कि इस यज्ञ द्वारा, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। आगे 12 में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं ही भोगता वो तो चोर ही है। 13 में स्पष्ट किया है जो दास आपको बताना चाहता है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब देखो 14 और 15 में स्पष्ट किया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं और कर्म समुदाय को तू ब्रह्म उद्भव, वे इन अर्थ कर दिया वेद से उत्पन्न, नहीं ब्रह्म माने इस ब्रह्म काल से उत्पन्न और वेद को और ब्रह्म को इस काल को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद किया जो बिल्कुल गलत है, कहीं नहीं हो सकता वेद का ब्रह्म का अर्थ वेद। ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं और ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं और वेद परमात्मा का संविधान है। तो ऐसे राजा, एक राजा है, एक राजा का विधान है, संविधान है, तो राजा को संविधान अर्थ नहीं किया जा सकता। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान अर्थ करता है तो अपरिचित व्यक्ति है, वो अज्ञानी है। ऐसी ब्रह्म प्रभु है और वेद तो प्रभु का विधान है, प्रभु की वाणी है। परमात्मा अलग है और वेदों में परमात्मा के विषय में जानकारी है, वेद परमात्मा नहीं है। तो यहां कहने का भाव है कि इन्होंने अर्थ इसलिए गलत कर दिया कि तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो यहां लिखा है कि ब्रह्म की उत्पत्ति वेदों अक्षर पुरुष से हुई, अक्षर से हुई है, अक्षर पुरुष, ये देखो कर्म समुदाय को तू यहां करो वेद से, ब्रह्म से, ब्रह्म से उत्पन्न, यानी क्योंकि काल के लोक में आए तुमने कर्म करके खाना पड़ा, सतलोक में कोई कर्म से नहीं बल्कि परमात्मा की तरफ से हमें सब वस्तु मिलती है। तो ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म यहां ब्रह्म लिखना था, काल अविनाशी परमात्मा से अक्षरम अक्षर सम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। ये परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो, परमात्मा को परम अक्षर ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। क्या मतलब हुआ कि जो अब ये समझना, इसको समझने के लिए आपको बार बार ये क्लास समझाया जाएगा। आप स्टूडेंट हैं, आप परमात्मा के प्राप्ति वाले विद्यालय स्कूल कॉलेज के यानी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, आप आपको रह रह कर ये चैप्टर रह रह कर ये क्लियर करना पड़ेगा दास को कि ताकि आप स्वयं तो भक्ति करोगे ही और साथ में भोली अन्य भोली आत्माओं को भी समझा करके इस दास के पास लाकर के उनका कल्याण करवाओगे, इस स्कूल में उनको भी प्रवेश दिलवाओगे। अब जैसे आपने गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोक 10 पढ़ा, उसमें कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने, वैसे तो प्रजापति का अर्थ कुछ और होता है, ये प्रजापति ब्रह्मा को मानते हैं हम, इसमें ज्यादा पचड़े ना पड़ के अपने उस उद्देश्य को सिद्ध करते हैं। कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, यानी सब यज्ञों को अनुष्ठानों के विषय में भी बताया था और साथ में प्रजा की रचना की, तुम लोग यज्ञ के द्वारा उन्नति को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो और तुम लोगों को यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्राप्त कराए। 11वें में लिखा कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। अब आपने ये भी पढ़ा है कि उस यज्ञ में प्रतिष्ठित, उस यज्ञ में प्रतिष्ठित वो परम अक्षर ब्रह्म है और उस परम अक्षर ब्रह्म से ही ये ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, वो सर्वगतम ब्रह्म, वो सर्वव्यापी अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब यहां देखिएगा कि जैसे हमने एक भक्ति रूपी पौधा लगाना है, तो ये है पूर्ण परमात्मा रूपी मूल। जैसा हमने प्रारंभ किया था इसको, कहां से हमने प्रारंभ किया था, 15वें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4। हम इसको समझाना के लिए आपको विस्तृत विवरण बता रहे हैं कि ये एक उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, और इसका ये तना मोटा तना कहलाता है, ये हिस्सा ये पार्ट जो है ये मोटी डार कहलाती है, फिर आगे शाखाएं कहलाई जाती हैं, ये पत्ते हैं। तो इसमें बताया गीता जी अध्याय नंबर 1 में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखाओं वाला। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अथ पंथ 10 अध्याय, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये प्रथम मंत्र है, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊपर को मूल वाला जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये अविनाशी उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी पीपल का वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि हैं वो इसके विभाग हैं, छंद हैं, टुकड़े हैं, और ये तम वेद जो इन सब संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को जानता है, तम ये जो तम माने उसको वेद माने जानता, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला था तो वो तत्वदर्शी संत है। यहां देखो, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले यानी जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है और अधय नीचे को इन ब्रह्मा रूप मुख ये मुख गलत लिखा। यहां देखना, इन्हीं के द्वारा अधय का अर्थ दूसरे श्लोक में अधय माने नीचे, अधय माने नीचे, दूसरे श्लोक में इन्होंने अधय का अर्थ नीचे किया है। तो हम यहां इसको अधय माने नीचे को, और ये यथार्थ है, अधय माने नीचे को, साख माने शाखा वाले, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। नहीं, ये इन्होंने गलत कहा है। इसका अर्थ सीधा बनता है कि जिसके पत्ते आदि जो पार्ट्स हैं वो छंद विभाग हैं, यह तम वेद। ये देखो संस्कृत मूल देखिए, छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद, इन्होंने बीच में घुसोड़ दिया वेद को। नहीं, उसके पार्ट्स हैं, उसके पत्ते आदि, उसके छंद विभाग हैं, यह तम वेद जो उसको जानता है, वेद माने जानना होता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्व ज्ञान से परिचित है, इसका यह अर्थ बनता है। पीपल रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, जो उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत होगा जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के पार्ट्स ऑफ ट्री के जो पूर्ण विवरण दे देगा, स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। तो यहां देखिएगा, ये है परमात्मा ने स्वयं आकर के, कबीर परमेश्वर ने एक तत्व रूपी संत की भूमिका की थी, उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले बताया था इस गीता जी के उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के बारे में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो वो परमात्मा ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, उनके बिना इस ज्ञान को कोई बता भी नहीं सकता। अब यहां देखो नरे नरे पार्ट्स, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो बाहर दिखाई देता उसको अक्षर पुरुष कहते हैं, पेड़ दिखाई, उसका अक्षर पुरुष ये पेड़ है यानी तने से संबंधित होता है। तो ये तना तो अक्षर पुरुष यानी क्षर पुरुष है, ये अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है, इससे एक मोटी डार निकली, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इस ब्रह्मा विष्णु यानी क्षर पुरुष से, ब्रह्म से आगे रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा है, और हम इससे आगे पात रूप में हम है, संसार रूपी ये पत्ते हैं। अब ये जड़ जो है ये मूल है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। अब यहां पूर्ण परमात्मा से ही आहार चलता है इस वृक्ष को, तने में आया, तना से डार, से डार में यानी परब्रह्म में, परब्रह्म से ब्रह्म में, ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, और फिर इन हमारे पास पहुंचा। अब हमने ये समझना है, जैसे इसमें बताया है कि तुम देवताओं को उन्नत करो और वो बढ़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करे, और साथ में ये भी कहा कि उस परम सर्वगतम ब्रह्म को यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी की पूजा करोगे तो तुम्हारे शुभ संस्कार बनेंगे, तुम्हें यथार्थ भक्ति लाभ मिलेगा, वो संस्कार बनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास तुम्हारे अकाउंट में जमा होंगे, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें वो शुभ संस्कार ही देंगे, अन्य कुछ नहीं दे सकते। तो हमने पूजा तो पूर्ण ब्रह्म की करनी होगी, उसके बताए अनुसार चलना होगा, उसके बाद जो संस्कार हमारे पुण्य बनेंगे जैसे भी यहां के, तो वो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, वो आपको वर्क डन देंगे, किए हुए कर्म का फल ही देंगे। वो कर्म कैसे बनेंगे, ये कर्म ऐसे बनेंगे। अब देखना, जैसे हम कोई भक्ति रूपी पौधा लगाना चाहते हैं, रोपना चाहते हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग, ये यथार्थ विधि है पौधा लगाने की। अब यहां हम क्या करेंगे, जैसे जड़ को मिट्टी में डालेंगे, दबाएंगे गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर, और फिर उसके उस मूल की जड़ की सिंचाई करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उसमें जल डालेंगे, खाद डालेंगे, तो वो खुराक फिर जड़ से तना में जाएगी परब्रह्म में, परब्रह्म से डार में जाएगी उस ब्रह्म में, और फिर डार से ब्रह्मा विष्णु महेश में पहुंचेगी, और फिर वो शाखा जो है वो फलों से लदबद्ध हो जाएंगी, और फिर वो फल हमें प्राप्त होंगे। होंगे किस विधि से, ये समझना है, फिर देखिएगा। ये है यथार्थ शास्त्र रुकुल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। यहां हमने जड़ यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा की, इसको प्रतिष्ठित किया। इससे आगे खुराक गई तनाव में, अक्षर पुरुष में अर्थात परब्रह्म में, फिर डार में, डार से इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर इनके फल लगेंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टी साधना कर रहे हैं। हमने इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बो रखा है। हमने टहनिया ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हमने पूजा करनी शुरू कर दी, जड़ को छोड़ दिया, हम भक्तिहीन होते जा रहे। अब हम ऐसे पूजा कर रहे हैं जो शास्त्र विधि रहित है, शास्त्र विरुद्ध साधना, अर्थात उल्टा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। तो यहां से पानी डाल रहे हैं, ये टहनियां गल गई और भक्ति रूपी पौधा हमारा सूख गया, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। अब हमने ना तो कोई छोड़ना है, हमने किसी, कहते हैं आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करते हैं और वो तो हमारे देवताओं को पूजा से मना करते हैं, वहां जाना ठीक नहीं। नहीं, दास किसी को मना नहीं करता। हमारे ज्ञान को ना समझ कर जो भ्रमित लोग, भ्रमित करने वाले, जो अपनी दुकानें बचाने वाले, जो धर्म की आड़ में शोषण कर रहे हैं जनता का, वो लोग भ्रमित करते रहते। दास नहीं कहता कुछ छोड़ने को, इस पौधे को सीधा करने को कहता ताकि आपको सर्व लाभ मिले। अब आप ऐसे पूजा करें, अन्य देवताओं की पूजा करते हो, और दास कहता कि ऐसे करो बस। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम कहां छोड़ेंगे, क्योंकि फल तो इन्होंने देना हमारे को। इन टहनियों को तोड़ने को कोई कहेगा वो मूर्ख है, उसको कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कोई कहे तो नालायक व्यक्ति है। नहीं, हम कहते हैं भक्ति रूपी पौधा सीधा करो और फिर फल यहां लगेंगे, जब ये पेड़ होगा तो यज्ञों में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा है। अब यज्ञ से बचे हुए अन्न को, अब जैसे हमें परमात्मा ने पूर्व संस्कारवश जो धन दिया है उसमें से हम दान पुण्य नहीं करते, हम चोर हैं उस मालिक के। और परमात्मा कहते जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूले, ते विदना बागुल किए अब रहे उर्द मुख झूले। बागुल पक्षी बना दिए जाते हैं, वो कहते हैं मुख से खाते हैं और मुख से ही टिट्टी करते हैं, वो बागुल पक्षी उल्टे लटके रहते हैं ऊपर को पंजों से और नीचे को मुंह रहता है उनका, ब्रह्म माटी होती है। अर्थात महादुखी प्राणी हो जाओगे जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, परमात्मा की महिमा से जो अपरिचित होकर के और ये दान पुण्य करना त्याग दिया, उनकी दुर्गति होगी। अब यही ये कहना चाहते हैं अपनी पवित्र गीता जी के, जो व्यक्ति पर, जो उन देवताओं के द्वारा दिए हुए बड़े हुए देवता जो तुम्हें धन देते हैं, अर्थात जो तुम्हारे यथार्थ भक्ति मार्ग से जो तुम्हें धन मिला उसमें से तुम आगे दान नहीं करते हो तो तुम कहते हो वो चोर हैं और केवल अपने उदर पोषण के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाकर खाता है, दान धर्म नहीं करता है, कहता वो पाप को ही खाता है। अब यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, यज्ञ से, यज्ञ कौन सा है, धार्मिक यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना को हम यज्ञ कहते हैं, यानी यथार्थ अनुष्ठान कहते हैं। उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, अब देखिए यज्ञ से, अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 में, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14-15 में स्पष्ट किया है कि संपूर्ण प्राणी ये अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शुभ कर्मों से, शास्त्र अनुकूल कर्मों से होने वाले हैं। और कर्म तो काल ब्रह्म के द्वारा लगा उत्पन्न किए जान, और ब्रह्म काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, और इससे सिद्ध होता है कि वह सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब यहां से प्रसंग उठा था, वहां गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से बच जाते हैं, क्योंकि जो साधना अनुशास्त्र अनुकूल नहीं कर रहे वो तो पाप कर रहे हैं, साधना करते तो भी पाप कर रहे हैं। और जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं वही पापों से, उन होने वाले शास्त्र विरुद्ध साधना से होने वाले पापों से वही बचते हैं जो यथार्थ साधना पूजा करते हैं।